यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति तत्र को मोहाकाशो का एकत्वं ननुपश्यतः। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति, जो संसार के सब प्राणियों को जीव जंतुओं को अपने आत्मा के समान समझता है, जैसे मेरा आत्मा है ऐसे इन सब प्राणियों में भी आत्मा है। तत्र को मोहा का शोका, उसको न किसी से मोह होता है और न शोक प्राप्त होता है। या एकत्वम मनुपश्यता, जो सब संसार के समझता है, किसी के साथ में कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखता है। काल प्रसंग चल रहा था, अत्यंत दुख निवृत्ति, दुखों का विनाश कैसे हो सकता है, क्योंकि संसार के सब प्राणी कुछ न कुछ किसी को सबको ही कुछ न कुछ दुख बना ही रहता है। किसी को शारीरिक दुख, किसी को मानसिक दुख, किसी को वाणी का दुख, क्योंकि कठोर वचन सुनने की आदत नहीं होती, वाणी का कलेश होता है, किसी के सहन नहीं कर सकता, और परिवार आदि के अन्य संबंधों के सर्वत्र दुख ही दुख देखने में आता है। और जिस काम को या जिस पदार्थ को हम सुख समझ करके उसके संग्रह के लिए लगते हैं, अंत में जाकर के वो भी दुख रूप सा ही प्रतीत होने लगता है, ऐसा देखने में आता है। जिस काम के अंदर, जिस कार्य के अंदर हमारी पहले बड़ी दिलचस्पी होती है, अंत में जाकर उससे तंग आकर के उससे भी दिल उपराम सा हो जाता है। तो कोई भी कार्य संसार का, कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो सदा के लिए सुख शांति का देने वाला हो। स्थिति के लिए मैंने चार साधन बतलाए थे, धर्म, अर्थ, ज्ञान और वैराग्य। धर्म, अर्थ, ज्ञान और वैराग्य, धर्म की व्याख्या कर चुके थे, अर्थ की व्याख्या कर रहा था। हमारे जितने भी कर्म हैं संसार के, जो हम जीवन में कर्म करते हैं, ये सब अर्थ के संग्रह के लिए होते हैं। जो भी कार्य हम उपलब्धि के लिए, प्राप्ति के लिए करते हैं, वो सब अर्थ के अंतर्गत आ जाते हैं। जितने भी आश्रमों के धर्म और कर्म हैं, सभी अर्थ के अंतर्गत आ जाते हैं। तो गीता तो कहती है, अर्थ कामेश परसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। अर्थ कामेश परसक्ता नाम, अर्थ और काम के अंदर जो लोग आसक्त हो जाते हैं, रात दिन उन्हीं की चिंता, उन्हीं के फिक्र में लगे रहते हैं, तया अपहृत चेतसाम, तो उनका चित्त बुद्धि हरण हो जाती है, अर्थ और काम से उनकी बुद्धि हरण हो जाती है। व्यवसाय आत्म उनकी निश्चय आत्म बुद्धि हो ही नहीं पाती, समाधौ न विधीयते। जब तक निश्चय आत्म बुद्धि नहीं होगी, अर्थ और काम में उनकी आसक्ति फसावट बनी रहेगी, समाधौ न विधीयते, तब तक समाधि की सिद्धि उनको नहीं हो सकती। अर्थों का संग्रह होता है, वो तो कुछ थोड़ा सा सुखदायक बना रहता है, और अधर्म पूर्वक जो अर्थों का संग्रह होता है, वो तो प्रत्यक्ष रूप से नितांत ही दुख और कलेश का हेतु बना रहता है। तो इसलिए धर्म को लक्ष्य रख करके वह अर्थ का संग्रह करना चाहिए। अर्थ के अंदर सब कुछ, सारी संपत्तियां, सारी विभूतियां, सारे कारोबार, सब कुछ संसार का जितना व्यवसाय है, सब अर्थ के अंतर्गत आ जाता है। तो इसलिए ये मानव जब से होश संभालता है और मरण पर्यंत अर्थ का ही संग्रह करता रहता है, इसको कहीं जाकर के शांति ही नहीं होती, कहीं जाकर ये टिकता ही नहीं, कहीं पहुंच करके बस ही नहीं करता, मरण पर्यंत संग्रह में ही लगा रहता है। तो ये जितना जितना संग्रह करता चला जाएगा, जेती जेती महरमी तेता तेता पाप, जितना जितना ज्यादा संग्रह करता चला जाएगा उतने उसके लिए बंधन मजबूत होते चले जाएंगे, और ऐसा बंधता चला जाएगा उनमें एक मैं भी हूँ। आज से 50 वर्ष पहले कोई आश्रम आश्रम का निर्माण नहीं किया था, घास की कुटिया बना करके नहर के गंगा के किनारे रहा करता था। बहुत वर्ष में 15-20 साल घास की कुटियाओं में रहता रहा, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर छोटी छोटी कुटिया बनाई, वहां गंगोत्री में पहुंचा, पैसा वैसा कुछ पास था, वहां के महात्माओं ने समझा ये पैसे वाला साधु आया, सब आसपास चिपकने लगे तो खाने पीने के लिए इकट्ठे होने लगे, उन्होंने मेरे लिए भोज पत्र की कुटिया बना दी, फिर आहिस्ता आहिस्ता कहीं से तख्ते ले आए उसकी कुटिया बना दी, तो वहां मैंने गंगोत्री में रहना सहना शुरू कर दिया। तो ये कुटिया, तो पहले तो ये ख्याल होता था कुटिया कूटती रहती है, साधु को कुटिया कूटती रहती है, कोई लगभग 50 साल की आयु तक कोई कुटिया पुटिया नहीं बनाई थी। तो मैं गुरु से ज्ञान प्राप्त करके आया था मानसरोवर से, उधर से ये गंगोत्री में प्राप्त किया था, तो मैं उसको परिपक्व दृढ़ करने के लिए कहीं स्थायी सा रह करके कई कई महीने उसको दृढ़ भूमि विज्ञान को करना चाहता था, जो मैंने क्या नाम 15 घंटे में प्राप्त किया था। उसके लिए दृढ़ भूमि करने के लिए मुझे कई वर्ष लगे, तो उसके लिए मैं फिर ऐसे स्थानों में रहना पसंद करता था। तो आहिस्ता आहिस्ता वो कुटिया बनी, फिर और साधु वगैरहों का परपंच वहां उनके लिए लंगर खोल दिया, रोटी खिलानी शुरू कर दी, पैसा मंगाना, तो गीता बढ़ने लगी, फैलने लगी। महात्माओं ने कहा कि महाराज हम 3 महीने यहाँ, 3 महीने क्षेत्र रहता, 2 महीने हम यहाँ भूखे रहते हैं, नीचे भागना पड़ता है, गर्मी होती, हम लोग बीमार हो जाते, हमें तुम आटा सुखा दे दिया करो, थोड़ी सी दाल और हम नमक और कुछ नहीं चाहते आपसे, मैं अच्छा दे दिया करो। तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने भी परपंच में फंसाना शुरू कर दिया, तो फिर कहने लगे क्या नाम आपका तो 400-500 रुपए सीजन में बड़ी सस्ती चीज है थी उस वक्त, ये क्षेत्र चल जाया करेगा। मैंने कहा भाई अच्छा तुम्हें रुपया दे दिया करूंगा, तुम चला लो। तो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ क्षेत्र, फिर वो कुटिया एक और बड़ी बन गई, एक रसोई बन गई, एक लंगर बन गया, गीता फैलते फैलते सारी फैल गई। तो अब देखो कितने आश्रम बना करके बैठा हूँ और कैसे उनमें बंधा हुआ हूँ। अब 4 महीने यहाँ बंधा रहूंगा तुम्हारे साथ में, अब 2 महीने वहां बंधा रहूंगा, कुछ कर्म भोग की भी बात होती है मनुष्य के। तो ये जितना भी सारा प्रपंच है अगर देखा जाए तो सब बंधन का ही है। इस उम्र में तो लोग, तो मेरे साथी तो कई दोस्त तो कब्रों में चले गए, शमशानों में चले गए, मैं बैठा हुआ हूँ। तो कहने का तात्पर्य ये है कुछ न कुछ तो बंधन रहता ही है ना, हमारे सबके अधीन तो रहना ही पड़ता है, नहीं आना हो तो तकलीफ फिर भी आना ही पड़ता है, नहीं जाना हो तो फिर भी जाना ही पड़ता है। तो बंधन को कोई सींग और पूछ थोड़ा ही होता है, तो मानने की बातें हैं बंधन। सो बंधन में मनुष्य कुछ न कुछ रहता ही है, जितने आश्रम हो जितना अर्थ हो, ये सब अर्थ है। आश्रमों का जो प्रपंच है ये भी सब अर्थ के अंतर्गत है। तो ये अर्थ जो है तो ये मनुष्य के सदा बंधन का हेतु बना, सारा संसार ही मैं क्या जो पैदा हुआ है सभी बंधे हुए, पशु पक्षी भी बंधे रहते हैं, अपने बाल बच्चे पैदा करते हैं उनको ला ला करके खाना देते, चुका देते, दाना देते, ये करते रहते। तो स्वाभाविक ही आज से ही नहीं, परंपरा से ये सिलसिला बंधा आ रहा है। तो ये अगर इसको बंधन समझा जाए या तो ऐसी भावना हो जाए कि जैसे परमात्मा के द्वारा भी संसार में सब कर्म हो रहे हैं, लोक व्यवहार आदि सब संसार का प्रपंच चल रहा है, परमात्मा कभी नहीं कहता कि मैं बंधन में हूं, पर कहीं वो भी हमारे की तरह आदमी होता तो उसने भी जरूर कहना था। उसका कोई आकार प्रकार नहीं देखने में आता, एक देश में नहीं है, सर्व देश में आकाश की तरह, इसलिए वहां कहने सुनने की बात नहीं है। जो शरीरधारी हुए हैं होंगे वो तो कुछ न कुछ बंधन में जरूर रहेंगे। तो इसलिए अर्थ संग्रह जो है ये, क्योंकि परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृद्धि द्रोदाच्य दुख में सर्वम विवेकिना, कहते विवेकी ज्ञानी जो होता है ये सारा अर्थ परिणामी है, विनाश होने वाला है, सदा स्थायी नहीं रहेगा। तो परिणाम तब्दील होने वाला है, स्थायी रहने वाला नहीं है, नाश होने वाला। ताप संग्रह करने में कितना कष्ट उठाना पड़ता है, कितनी तपस्या करनी पड़ती है, कितना कुछ कार्य करना पड़ता है, तो ये ताप कहलाता है। तो ये परिणाम ताप संस्कार, क्योंकि संस्कार इससे संस्कार बनेंगे, और पिछले संस्कार थे उन संस्कारों ने ये प्रपंच तैयार कराया है, और ये संस्कार रहेंगे तो अगला प्रपंच तैयार करेंगे। तो इसलिए ताप रूप और संस्कार रूप भी परिणाम ताप संस्कार दुख ही गुण वृद्धि विरोधाच्छे दुखमेव सर्वम विवेकिना, क्योंकि ये परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख, तीन प्रकार के दुख इसमें मिश्रित होते हैं। कोई भी पदार्थ, कोई भी कार्य संसार का ऐसा नहीं है जो परिणाम और ताप और संस्कार के अंतर्गत नहीं आता। इसलिए कहा है कि दुखमेव सर्वम विवेकिना, अंत में जाकर के कोई भी व्यवसाय, कोई भी कर्म किया जाए, उसका अंतिम रिजल्ट दुख रूप ही होता है। मातृ ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण, तीन प्रकार के ऋण होते हैं। मातृ ऋण तो तब चुकता है, विवाह किया है, एक कन्या पैदा कर करके, जैसे दूसरों की कन्या ले करके आया हूँ, अपनी कन्या पैदा कर करके दूसरों को दान के रूप में दे दिया जाए, क्योंकि दान लेकर के आया, ये तो मातृ ऋण दूर होता है कन्या के पैदा करने से। और एक पितृ ऋण होता है, क्योंकि पिता ने पैदा किया है, गुरु से विद्या सीखी है, उसको सीख करके मैं भी दूसरों को सिखाऊं, तब गुरु ऋण दूर होगा। मैं जब गंगोत्री वाले जो कैलाश से गुरु आए थे, जिनसे ये विज्ञान प्राप्त हुआ था, पहले ने तो मेरे से कोई प्रतिज्ञा नहीं कराई थी, पर दूसरे गुरु ने जब मैं इसके पास गया तो पहले यही प्रतिज्ञा कराई थी कि देखो 6 साल के बाद तुम मेरे पास एक अभ्यासी आए हो, और 6 साल पहले आया था वो तो तकलाकोट में जा बैठा ज्ञान मान शिक्षा करके, तुम्हें इस विज्ञान का प्रचार और प्रसार करना होगा, पुस्तकों के द्वारा लिख करके भी और वैसे भी, और सिखा के भी इस विज्ञान की परंपरा चलानी होगी। ये प्रतिज्ञा उन्होंने मेरे से ली थी, तब वो बताने के लिए तैयार हुए थे, और तब उन्होंने ये विज्ञान दिया। तो उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए मैं आज तक उनका कर्जा नहीं चुका पाया, और ये जो इस प्रकार की आश्रमों की ये रचना हुई, मेरे लिए तो एक कुटिया भी काफी हो सकती थी, ये तुम्हारे भक्तों के, शिष्यों के सुख और आराम के लिए सब साधन बनाए गए। तो इसलिए एक गुरु ऋण को चुकाने के लिए ये आश्रमों के प्रपंच करने पड़े, और अब भी ये सिखा करके बतला करके ये गुरु ऋण को चुकाने, परंतु मैं अब भी उनके ऋण से अपने को दबा हुआ सा समझ रहा हूं, कि जो उन्होंने प्रदान किया है वो शायद पता नहीं है कितने जन्मों के बाद ये मेरे ऊपर कृपा हुई है, मैं तो ये कहूंगा। अब भी मैं उनका बहुत ऋण अपने ऊपर समझता हूं। अगर उस ऋण को चुकाने के लिए और भी कोई जन्म धारण करने पड़े तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई कलेश नहीं, चाहे बीचियों क्यों ना धारण करने पड़े। तो किसी के कर्जे को चुकाने के लिए, तो ये गुरु का ऋण चुकाने के लिए ही मैंने आश्रमों के प्रपंच रचे या व्यवस्था बनाई आप लोगों के सुखों के लिए। तो बात चल रही थी अर्थ के संग्रह की, तो ये सब अर्थ के अंतर्गत आ जाता है। या अर्थ, अर्थ मनुष्य के लिए दुख और कलेश का हेतु भी होता है, और अर्थ मोक्ष का हेतु भी होता है। अर्थ का अगर सदुपयोग किया जाए, अच्छे काम में लाया जाए, देखो एक मनुष्य के पास धन है, धन मनुष्य के लिए सुख का हेतु भी होता है, दुख भी होता है। दुख का कैसे, जुआ खेलने लगूं, शराब पीने लगूं, दुराचार करने लगूं, तो वो जो धन अर्थ है मेरे लिए दुख और कलेश का हेतु। अगर उस धन को मैं गरीबों के उपकार के लिए, अनाथों के उपकार के लिए, विधवाओं के उपकार के लिए, अस्पतालों आदि के लिए, दुखों दुखियों के दूर दुख दूर करने के लिए अगर उस धन का मैं उपयोग खर्च करता हूँ तो वो सुख और शांति का दूसरों के लिए हेतु हो जाता है। तो सब प्रकार के, दोनों प्रकार के गुण हैं हर एक पदार्थ के अंदर। निर्गुण संसार में कोई पदार्थ है नहीं, सब सगुण ही है। पर उनको या बुद्धिमान जो होते हैं वो ठीक उपयोग में वर्त कर करके दूसरों के लिए भी उसको सुख का हेतु पैदा किया हुआ करते हैं। तो इसलिए संसार की परंपरा ये इस तरह चलती रहेगी। हमारे आचार्यों ने, माँ बाप ने, गुरुजनों ने भी इस परंपरा को चलाया है और हमने भी चलाना। तो ये विज्ञान की परंपरा जो है ये संतों महात्माओं के द्वारा ही चलती है। और ये इस प्रकार का विज्ञान जो है ये भी अर्थ के अंतर्गत आता है। मनन किया, चिंतन किया, निध्यासन किया, एक श्लोक आता है, जानापि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानापि अधर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन नियोजिता मे यथा नियुक्तोसि तथा कर। जानापि धर्मम न च मे निवृत्ति, धर्म के कार्यों को भी जानता हूँ ये कर रहा हूं परंतु इससे मेरी निवृत्ति भी हो पाती, ये धर्म का ही कार्य है। जानापि अधर्मम नचे मे निवृत्ति, अधर्म के भी स्वरूप को जानता हूं। बहुत दफे अब ये अधर्म की बात बतलाएं, ये जो आश्रम लिया गया इसमें कुछ अधर्म सा होना करना पड़ा, रुपया इधर उधर से इकट्ठा कर करके टैक्स वैक्स से बचाने बचाने की कई अड़चने बातें सोच सोच करके इतना 6 लाख रुपया उधर इकट्ठा कर करके दिया, तो इसमें थोड़ा बहुत पाप भी हुआ होगा। अर्थ में तो पाप थोड़ा बहुत होता ही है। अब पाप क्या हुआ, कहीं से रुपया आया, कोई गुप्त दाह कराया, तो ये भी थोड़ा बहुत कुछ तो पाप है ही। तो अब जाना भी अधर्मम न छेदे निवृत्ति, इस प्रकार के अधर्मों को भी जानता हूँ पर उसे निवृत्ति नहीं हो पाई। केनापि देवे नियोजिता में, तो कोई प्रारब्ध के भोग या कोई देवी शक्ति भगवान ऐसी कोई जबरदस्त शक्ति या ताकत है, केनापि देवे नियोजिता में, कौन सी चाहे प्रारब्ध के भोग समझो, चाहे वो परमात्मा समझो या वो प्रकृति देवी समझो या कर्मों या संस्कारों की प्रधानता समझो, केनापि देवे नियोजिता में, किसी प्रबल शक्ति ने मुझे जबरदस्ती नियोजित किया है ऐसे कर्मों में, यथा नियुक्तोसी तथा करो, जैसे वो नियोजन करता है वैसे ही। एक तो ये बात है। दूसरी अर्थ के विषय में ये सोच लिया है कि आज अगर मैं हट करके सब कामों से आश्रमों से छोड़कर बैठ जाऊं किसी पेड़ के नीचे कहीं जंगल में गुफा में बैठना पड़ेगा, भूख लगेगी, रोटी कहीं से लानी पड़ेगी, पकानी पड़ेगी, पैसा रखना पड़ेगा, तुम्बा पकड़ के दूसरे के घरों में जाना पड़ेगा, भूख लगेगी, उसको तो खाने को होना चाहिए, फिर टट्टी आएगी जबरदस्ती जाना पड़ेगा, पेशाब आएगा उसको नहीं रोक सकता जाना पड़ेगा, नींद आएगी जबरदस्ती वहां सोना पड़ेगा, हमेशा सोया भी नहीं जा सकता उठना भी पड़ेगा। तो बहुत से कर्म हैं ऐसे कि जिनको कोई शरीर के रहते हुए छोड़ ही नहीं सकता, टट्टी को, पेशाब को, भूख को, चलने को, फिरने को, निद्रा को, तंद्रा को, खाने को, इनको कोई रोक नहीं सकता, जैसे स्वाभाविक कर्म है। तो जब इनको नहीं रोका जा सकता, इनको करना ही है, तो इस प्रकार के कर्म करने में भी क्या आपत्ति है, इनको भी टट्टी पेशाब की तरह नींद की तरह समझ करके करते रहना चाहिए। जब अपने शरीर के लिए ये कर रहा हूं या करने पड़ते मुझे या करूंगा, तब तुम्हारे लिए करने पड़े तो इसमें क्यों मैं दुख और आपत्ति मानूं। जब इच्छा न होने पर भी अपने शरीर के लिए कर्म करने पड़ते हैं तो इच्छा न होने पर भी दूसरों के लिए कर्म करने में क्यों आपत्ति समझी जाए। भूख लगेगी खाना ही है, टट्टी पेशाब आएंगे जाना ही है, तो जैसे टट्टी पेशाब आने हैं जाना है, तो इसी प्रकार इन कर्मों को करते हुए भी क्यों दुख माना जाए, क्यों क्लेश माना जाए। यही है विज्ञान की बात जो अब मैं कल कहना चाहता हूं और जिसको मैं कहूंगा। कि तीसरा साधन है मोक्ष का विज्ञान, उसके विषय में कल वर्णन करूंगा।